24 जून दिन शुक्रवार बीबीसी के सभी श्रोताओं को राजेश जोशी का नमस्कार। ब्रितानी राजनीति के सारे योग रातों रात पलटे। ब्रिटिश जनता ने यूरोपीय संघ को कहा अलविदा। प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने पद छोड़ने की घोषणा की।
I will do everything I can as Prime Minister to steady the ship over the coming weeks and months. But I do not think it would be right for me to try to be the captain that steers our country to its next destination.
ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से अलग करने के लिए वोट देने वालों की खुशी का पारावार नहीं।
We've got our country back.
साथ ही सुनेंगे कि दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इस फैसले का क्या असर होगा। लंदन स्टूडियो से कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रोफेसर इफ्तिखार मलिक। पर ये सब थोड़ा ठहर कर पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, आप सुन रहे हैं सुशील झा से। एक जनमत संग्रह में ब्रिटेन के लगभग 52% लोगों ने यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने का समर्थन किया है। इस फैसले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने इस्तीफा देने का ऐलान किया। वो अगले 3 महीने में पद छोड़ देंगे। ब्रिटेन पिछले 43 वर्षों से यूरोपीय संघ का सदस्य रहा है। यूरोपीय संघ से अलग होने का समर्थन कर रहे प्रमुख कंजर्वेटिव नेताओं में से एक बोरिस जॉनसन ने कहा है कि लोगों ने लोकतंत्र का समर्थन किया है और ब्रिटेन यूरोप को अपनी पीठ नहीं दिखा रहा। हालांकि स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के लोगों ने यूरोपीय संघ के साथ रहने का समर्थन किया। यूरोपीय संघ के नेताओं ने जनमत संग्रह के इन परिणामों पर अफसोस जताया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि वो इन परिणामों का सम्मान करते हैं। यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष जॉन क्लॉड जुंकर ने कहा कि अनिश्चितता कम होनी चाहिए। हम अब उम्मीद करते हैं कि यूनाइटेड किंगडम सरकार ब्रितानी लोगों के फैसले पर जल्दी से जल्दी अमल करेगी, भले ही इसके अलग होने की प्रक्रिया कितनी ही दर्दनाक क्यों ना हो। इसमें देरी से अनिश्चितता ही बढ़ेगी। जॉन क्लॉड जुंकर के शब्द। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के मुद्दे पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि वो ब्रितानी जनता के मत का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि अमरीका के लिए ब्रिटेन और यूरोपीय संघ दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। अमरीकी रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रितानी जनता की राय का स्वागत किया और कहा कि लोगों ने यूरोपियन यूनियन से अपनी आज़ादी के लिए वोट किया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लवारोफ का कहना है कि यह ब्रितानी लोगों का अंदरूनी मसला है। स्कॉटलैंड ने यूरोपीय संघ के साथ रहने का समर्थन किया है, जिसके बाद स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन ने कहा कि सरकार एक ऐसा विधेयक तैयार कर रही है जिसके तहत ब्रिटेन से स्कॉटलैंड को अलग किए जाने पर दोबारा जनमत संग्रह हो सके। उनका कहना है कि ईयू के मुद्दे पर ब्रितानी लोगों की राय के बाद माहौल बदल गया है और स्कॉटलैंड के ब्रिटेन के साथ रहने पर भी दोबारा जनमत संग्रह होना चाहिए। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने से जुड़े जन्म संग्रह के आने का असर बाजार पर भी पड़ा है। दुनिया के कई प्रमुख बैंकों ने कहा है कि वो इसका सामना करने के लिए कदम उठा रहे हैं। अमरीका और एशिया के शेयर बाजारों में भी भारी गिरावट देखी गई है। ब्रितानी करेंसी पाउंड अपने 3 साल के न्यूनतम स्तर पर चला गया है, लेकिन अब पाउंड थोड़ा संभला है। ब्रेक्सिट का असर तेल की कीमतों पर भी पड़ा है। और अब खबरें भारत की। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में शामिल होने की भारत की कोशिशों को चीन के विरोध के बाद बड़ा झटका लगा है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार एनएसजी से जुड़ी बैठक शुक्रवार को समाप्त हो गई, लेकिन भारत की सदस्यता पर कोई फैसला नहीं हो सका। हालांकि इस बीच उज्बेकिस्तान में चल रहे शंघाई कोऑपरेशन संगठन के सदस्य देशों की बैठक में भारत और पाकिस्तान को संगठन की सदस्यता देने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सितंबर के महीने में मिनी आईपीएल आयोजित करने का विचार किया है। यह आयोजन विदेश में किया जाएगा। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है। दिन भर कार्यक्रम हर लेकर हाजिर हूं मैं राजेश जोशी। पूरे 43 वर्षों का साथ कच्चे धागे की तरह एक झटके में टूट गया। ब्रिटेन के लोगों ने आखिरकार फैसला सुना दिया कि अब वो यूरोपीय संघ के साथ नहीं रहना चाहते। लगभग 52% लोगों ने रायशुमारी में यह फैसला किया है। नतीजे आने के कुछ ही देर बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने 3 महीने के भीतर अपना पद छोड़ देने की घोषणा कर दी। जाहिर तौर पर यह उनकी बहुत बड़ी हार थी। उन्होंने ब्रिटिश लोगों से यूरोपीय संघ के साथ रहने की अपील की थी, पर राय शुमारी में हिस्सा लेने वाले लोगों में से 52% ने उनकी इस अपील को ठुकरा दिया। एक नेता के तौर पर कैमरन की धमक और चमक एकदम फीकी पड़ गई। आज के इस कार्यक्रम में इस खबर के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन आइए पहले सुनते हैं लंदन से बीबीसी संवाददाता पवन सिंह अतुल की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री कैमरन और उनकी पत्नी जैसे ही 10 डाउनिंग स्ट्रीट से बाहर निकले, उनके चेहरे पर जज्बात साफ पड़े जा सकते थे।
गुड मॉर्निंग एवरीवन,
उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के लोगों की इच्छा की इज्जत होनी चाहिए और फिर कहा कि यूरोपीय संघ में बने रहने की जंग लड़ने और हारने के बाद अब देश को नए नेता की जरूरत है।
मैं सोचता हूं कि देश को एक अलग नेतृत्व की जरूरत है जो उसे नए रास्ते में आगे ले जा सके। आने वाले महीनों में मैं प्रधानमंत्री के रूप में हालात सामान्य बनाए रखने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ब्रिटेन को अगली मंजिल तक पहुंचाने वाला कप्तान बन सकता हूं।
कैमरन के जज्बाती बयान में उनके कंजर्वेटिव पार्टी के कुछ नेताओं के लिए अवसर छिपे हैं।
इन्हीं
में से एक हैं लीव कैंपेन के प्रमुख चेहरा और लंदन के पूर्व हाई प्रोफाइल मेयर बोरिस जॉनसन।
मेरे ख्याल से अब हमारे पास एक भव्य अवसर है। हम अपने कानून बना सकते हैं, अपने तरीके से टैक्स लगा सकते हैं, पूरी तरह से अपने लोगों को ध्यान में रखते हुए ये सारे काम कर सकते हैं।
नतीजों के बाद अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। दुनिया के वित्तीय बाजार की धड़कन लंदन के कैनरी वॉर्फ इलाके में आज सुबह से ही मायूसी छा चुकी थी। बैंक ऑफ इंग्लैंड के प्रमुख मार्क कार्नी को बयान देना पड़ा कि जरूरत पड़ी तो वो अर्थव्यवस्था में संतुलन लाने के लिए हस्तक्षेप कर सकते हैं।
आज की घटना के लिए हमने सभी जरूरी कदम उठा लिए हैं, लेकिन भविष्य में भी हम ऐसा कोई कदम उठाने से नहीं चूकेंगे जो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के लिए अहम होगा।
लेकिन ये चोट सिर्फ आर्थिक नहीं है। जिस तरह से जनमत संग्रह में वोटिंग हुई है उससे ब्रिटेन के चार राज्यों के बीच विभाजन को और गहरा दिया है। स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड ने भारी बहुमत से यूरोप का साथ देने के लिए वोट किया, लेकिन इंग्लैंड और वेल्स ने बाहर का रास्ता चुना। आयरलैंड की प्रमुख पार्टी सिनफेन के नेताओं ने कहा है कि वो अब ब्रिटेन से अलग होने के लिए जनमत संग्रह की मांग को और तेज करेंगे। उधर स्कॉटिश नेशनल पार्टी की नेता निकोला सर्जन ने कहा कि ये स्वीकार करना मुश्किल है कि स्कॉटलैंड को अपनी मर्जी के खिलाफ यूरोपीय संघ से बाहर लाया जा रहा है।
हमें अब दूसरा जनमत संग्रह करवाने का अवसर दिया जाना चाहिए और हम इसके लिए तैयारी करना शुरू कर देंगे।
लेकिन यूरोपीय संघ से नाता छोड़ने के हिमायती दक्षिणपंथी पार्टी यूनाइटेड किंगडम इंडिपेंडेंट पार्टी के प्रमुख नाजिल फराज ने कहा कि वो आखिरी सांस ले रहे संघ से आजादी मिलने पर खुश हैं।
1,70,00,000 लोगों ने कहा है कि वो यूरोपीय संघ का साथ छोड़ देंगे। अब हमें एक नई सरकार चाहिए, ऐसी सरकार जो इस काम को अंजाम तक पहुंचाए।
आज का दिन ब्रिटेन और यूरोप के बीच रिश्तों में एक युग के अंत जैसा है, खासकर ब्रिटेन के लिए, क्योंकि अब ये देश एक अनिश्चित यात्रा पर निकल रहा है जिसमें उसे सबसे पहले एक नेता तलाशना है। पवन सिंह अतुल, BBC लंदन।
यूनाइटेड किंगडम इंडिपेंडेंस पार्टी UKIP के नाइजल फराज वो ब्रिटेन के नेता हैं जिन्होंने डेविड कैमरन की सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी को यूरोपीय संघ की सदस्यता के मुद्दे पर राय शुमारी करने पर मजबूर कर दिया और आखिरकार उनका नाम ब्रिटेन के इतिहास में एक ऐसे नेता के तौर पर दर्ज हो गया जिसने मुल्क को EU से अलग करने में सफलता हासिल की। सुशीला सिंह से सुनिए कि जनमत संग्रह और वोटों की गिनती में क्या क्या हुआ।
ब्रिटेन के लोगों ने यूरोपीय संघ या EU की 43 साल पुरानी सदस्यता को खत्म करते हुए उससे बाहर रहने का फैसला किया है। EU में रहने या ना रहने को लेकर हुए जनमत संग्रह में 51.9% लोगों ने EU से बाहर रहने के पक्ष में वोट किया और 48.1% लोगों ने इस पक्ष में वोट डाले। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने EU में रहने को लेकर खूब प्रचार प्रसार किया, लेकिन उन्हें नकारते हुए UK के ज्यादातर भाग में रहने वाले लोगों ने इससे बाहर रहने का फैसला किया। ब्रसल्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया दी और इसे ऐतिहासिक क्षण बताया।
There's no hiding the fact that we wanted a different outcome of yesterday's referendum. I am fully aware of how serious or even
कोई छिपाने की बात नहीं है कि हम कल हुए जनमत संग्रह का नतीजा कुछ और सोच रहे थे। मैं जानता हूं कि ये कितना गंभीर है और राजनीतिक तौर पर कितना नाटकीय है, लेकिन इस घटना के राजनीतिक परिणामों के बारे में पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है, खासतौर पर UK के लिए। ये एक ऐतिहासिक क्षण है, लेकिन ये एक तरह से बिना सोचे समझे दी गई प्रतिक्रिया है। मैं आप लोगों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम इस नकारात्मक परिदृश्य के लिए भी तैयार हैं।
ये थे यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क के शब्द। इंग्लैंड में 93.4% और वेल्स में 52.5% लोगों ने ईयू के बाहर रहने के पक्ष में मतदान किया और इसके इतर नॉर्दर्न आयरलैंड, लंदन और स्कॉटलैंड ने ईयू में रहने का फैसला किया। बीबीसी से बातचीत करते हुए डच की एमईपी सोफी एंटवेल्ट का कहना था कि यूरोप के लिए एक बड़ा धक्का है।
A majority of Brits have voted leave and that means leave. I mean it's a clear signal. I'm very disappointed about it.
ज्यादातर ब्रिटानियों ने ईयू से बाहर रहने के पक्ष में वोट किया है। ये एक तरह से साफ संकेत है। मैं इस बात से काफी निराश हुई हूँ। ये दुखद भी है, खासकर युवाओं के लिए। इनमें से लोगों ने ईयू में रहने के पक्ष में भी मत दिया है, इसलिए इनका भविष्य अस्थिर है। मैं ये भी मानती हूँ कि आप यूरोपीय संघ से तो बाहर निकल सकते हैं, लेकिन सच्चाई को नकार नहीं सकते। ये थी डच की एमईपी सोफी एंटवेल्ट के शब्द। इस मतदान में 4,60,00,000 लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया। ईयू से बाहर रहने के फैसले पर पेरिस के लोगों का कहना था,
ये उनके लिए शर्मनाक है। मुझे नहीं लगता कि वो खुद को संभाल पाएंगे।
इंग्लिश बहुत मजबूत होते हैं, उन्होंने इतिहास के जरिए ये साबित किया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई दिक्कत आएगी, बल्कि मेरा मानना है कि यूरोप के लिए दिक्कत हो सकती है।
पोलैंड के लोगों ने ब्रिटेन के फैसले को चौंकाने वाला बताया है। इन लोगों ने कहा,
मैंने इस फैसले की उम्मीद नहीं की थी। मुझे लगा था कि ब्रिटेन के लोग ईयू में रहने के पक्ष में वोट डालेंगे।
मैं इस फैसले से चिंतित हूँ। मैं यूरोपीय संघ के विघटन और जो अन्य देशों में हो रहा है उसे लेकर चिंतित हूँ, क्योंकि वहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है।
उधर जर्मनी में भी लोगों ने ब्रिटेन के ईयू से अलग होने के फैसले पर दुख जाहिर किया।
Ich bin kein Wirtschaftler, aber also ich mache im Moment gerade Sorgen.
मैं अर्थशास्त्री तो नहीं हूं, लेकिन मैं चिंता में हूं। जर्मनी को लेकर नहीं, बल्कि ब्रिटेन को लेकर।
जनमत संग्रह के नतीजों को लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन ब्रिटेन के ईयू से बाहर निकलने के लिए प्रचार करने वाले लंदन के पूर्व मेयर बोरिस जॉनसन का कहना है कि मतदाताओं के लिए शानदार मौका है जब वो अपने कानून और सीमाओं पर खुद नियंत्रण रख सकेंगे। उनका कहना था कि मतदाता लोकतंत्र के लिए खड़े हुए हैं और ब्रिटेन यूरोप को पीठ नहीं दिखा रहा है।
ये थी सुशीला सिंह की रिपोर्ट। हमारे जिन श्रोताओं ने रेडियो देर से खोला है, उन्हें बता दें कि ब्रिटेन के लोगों ने यूरोपीय संघ से अलग होने का फैसला किया है। इसके तुरंत बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने 3 महीने के भीतर पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। आइए सीधे चलते हैं बीबीसी के मुख्यालय लंदन में, जहां आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है बाथ विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर इफ्तिखार मलिक को। प्रोफेसर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। खैर मकदम करते हैं, डेविड कैमरन गए, अब सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी में नेतृत्व की दौड़ यानी कयादत की दौड़ शुरू हो गई है। ब्रिटेन की जो सियासत है, राजनीति है, किस डायरेक्शन में, किस दिशा में जा रही है?
इस रेफरेंडम ने सबको सरप्राइज किया है, क्योंकि इवन जिन्होंने विन किया है वो भी इसकी तवक्को नहीं कर रहे थे, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और रिमेन वाले ज़्यादा पॉजिटिव थे। वो समझते थे कि ब्रिटेन रिमेन यूरोप में रहेगा, यूरोपियन यूनियन में। तो एक तो इसकी जो सडननेस है इस रिज़ल्ट की, उसने सबको अननर्व किया हुआ है, परेशान किया हुआ है। दूसरा ये जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो अपने आप को रीअसेस कर रही हैं। मसलन स्कॉटिश नेशनल पार्टी है, वो उसने दोबारा एक और रेफरेंडम का मुतालबा कर दिया है। वो समझते हैं कि अब स्कॉटलैंड को ब्रिटेन के अंदर रहने का और कोई जवाज़ नहीं है। इसी तरीके से लेबर पार्टी के अंदर भी थोड़ी सी प्रोटेस्ट की जो वॉइसेस हैं, आवाज़ें हैं, वो उठ रही हैं। और सबसे ज़्यादा जो मेरे ख्याल में धचका लगा है, वो जैसे आपने कहा है, डेविड कैमरन की अपनी पार्टी टोरी पार्टी को, कंजर्वेटिव पार्टी को, सबसे पहले बगावत उनके अंदर से शुरू हुई थी। और यूकिप ने भी काफ़ी गेन किया है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि यूके इंडिपेंडेंस पार्टी ने चूँकि अपना मुतालबा पूरा करा लिया है, एक किस्म की इंडिपेंडेंस ले ली है यूरोपियन यूनियन से, तो शायद अब उनके लिए कोई और नया इशू नहीं रहेगा जिसको वो लोगों को सेल कर सकें। तो डेविड कैमरन के जाने के बाद अब टोरी पार्टी के अंदर कैसे इत्तेफाक होता है, कैसे कंसेंसस होता है, नया प्राइम मिनिस्टर कौन आता है, तो ये नेक्स्ट वीक्स जो हैं, फ्यू वीक्स बहुत क्रूशल हैं। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अक्टूबर तक हैं। लेबर पार्टी में भी काफ़ी हद तक ये शॉक है कि नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में जो लेबर की मेन सपोर्ट है, वहाँ से रेफरेंडम में यूरोपियन यूनियन से निकलने के हक में वोट पड़ा है
जी,
जिसने लेबर के सपोर्टर्स को बहुत शॉक किया है और कुछ लोग एतराज़ भी कर रहे हैं जेरमी कॉर्बिन की लीडरशिप पे। वो समझते हैं कि जेरमी कॉर्बिन को जो लेबर के लीडर हैं उनको ज़्यादा असर्टिव होना चाहिए था और लेबर के जो ख़ास तौर पे हल्के हैं मिडलैंड्स में नॉर्थ में
जी
और वेल्स में उनको चाहिए था कि वो यूरोप के अंदर रहने के लिए वोट दें, लेकिन प्रोटेस्ट वोट है, टोरी पार्टी के खिलाफ वोट है, इकोनॉमिक सिचुएशन जैसे ऑस्टेरिटी जिसे कहते हैं उसके खिलाफ वोट है। तो अगले तीन महीने ब्रिटिश पॉलिटिक्स के लिए बहुत
मुश्किल
हर पार्टी के लिए।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर इफ्तिखार मलिक। मैं कुछ सवाल करने के लिए कार्यक्रम में आगे भी आपके पास आऊँगा और ये भी जानेंगे कि यूरोपीय संघ क्या है, कैसे काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया पर भी रिपोर्ट आने वाली है, बात बाजार की भी होगी और कल यानी शनिवार को जनमत संग्रह यानी राय शुमारी के मुद्दे पर होगा इंडिया बोल।
बीबीसी इंडिया बोल।
ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से अलग होने का फैसला किया। फैसला जनमत संग्रह से हुआ। पहले भी ब्रिटेन के साथ रहने के मुद्दे पर स्कॉटलैंड में जनमत संग्रह हुआ था, परिणाम ब्रिटेन के पक्ष में गया। अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए जनमत संग्रह कराना चाहते हैं। सवाल यह है कि क्या जनमत संग्रह के जरिए भारत की राजनीति के पेचीदा सवाल सुलझाए जा सकते हैं। इस शनिवार 25 जून को बीबीसी इंडिया बोल में यही है बहस का मुद्दा। शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1802-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर राजेश जोशी के साथ। कार्यक्रम में आगे जानेंगे सोशल मीडिया पर लोग इस खबर पर क्या चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथी पंकज प्रियदर्शी स्टूडियो पहुंचने वाले हैं, प्रोफेसर इफ्तिखार मलिक के पास भी जाएंगे। पर आइए पहले ये समझ लें कि यूरोपीय संघ है क्या और कैसे काम करता है। जानकारी दे रहे हैं मोहनलाल शर्मा और स्वाति बख्शी।
यूरोपीय संघ या ईयू की शुरुआत कैसे हुई?
दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के रक्तपात और विध्वंस से उबर रहे फ्रांस और जर्मनी ने सबसे पहले 1950 में एक समझौता किया था जो कि यूरोपीय संघ की बुनियाद बना। 28 देशों का ये समूह है जो कि अब घटकर 27 हो गया है। साझेदारी के बाद यूरोपीय संघ एक संयुक्त बाजार है जिसकी अपनी संसद और अपनी मुद्रा भी है।
यूरोपीय संघ के मुख्य देश कौन से हैं और कौन से संस्थान इसके आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक कार्यों को पूरा करते हैं?
जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, इटली, बेल्जियम और ग्रीस अक्सर यूरोपीय संघ के मुख्य देश माने जाते हैं। यूरोपीय संघ का काम संभालने के लिए चार मुख्य संस्थानों का गठन किया है जो कि हैं यूरोपीय आयोग, यूरोपीय संसद, यूरोपीय परिषद और न्याय अदालत।
ईयू यानी यूरोपीय संघ के बजट में कौन सा देश कितना योगदान देता है और इसका इन देशों को क्या फायदा होता है?
सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि यूरोपीय संघ का कुल बजट है 125 अरब डॉलर। सबसे ज्यादा यानी कि 21% योगदान जर्मनी की ओर से आता है। इसके बाद फ्रांस लगभग 16% का योगदान देता है, ब्रिटेन 12.6%, इटली 11.5% और स्पेन का योगदान है 8%। इस योगदान के बदले इन देशों को यूरोपीय संघ के किसी भी देश में बिना रुकावट व्यापार करने का अधिकार मिलता है।
ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से अलग होने का फैसला तो कर लिया है, पर अब आगे क्या होगा?
पहली बात तो ये है कि कुछ भी अचानक नहीं बदलेगा। फिलहाल ब्रिटेन यूरोपीय संघ का हिस्सा है और जब तक राजनेता तय नहीं कर लेते कि आगे क्या करना है। यूरोपीय नेता भी इस पर दुख जाहिर कर सकते हैं, ब्रसेल्स में आपात बैठकें हो सकती हैं।
हर कोई ये जानना चाहेगा कि ब्रिटेन यूरोप से आधिकारिक तौर पर कब अलग हो रहा है।
यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया का उल्लेख दरअसल लिस्बन समझौते के अनुच्छेद 50 में है जिसके मुताबिक आधिकारिक निर्णय लेने के बाद किसी भी देश के पास अलग होने की शर्तें तय करने के लिए 2 साल का वक्त होता है। अभी ये तय नहीं है कि ये होगा कब। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ को नए व्यापार समझौते पर काम करना होगा। अगर ब्रिटेन यूरोपीय संघ के बाजार से बाहर नहीं होना चाहता तो उसे यूरोपीय संघ के बजट में भुगतान करते रहना पड़ सकता है और साथ ही उसे यूरोपीय संघ के नियमों का भी पालन करना पड़ेगा।
क्या यूरोप के अन्य हिस्सों के लोग स्वतंत्र रूप से आवागमन कर सकते हैं?
यूरोप के अन्य हिस्सों से लोगों के स्वतंत्र आवागमन को भी बरकरार रखना पड़ सकता है। अन्य यूरोपीय संघ के देशों में रह रहे ब्रिटिश नागरिकों का और ब्रिटेन में रह रहे यूरोपीय संघ के देशों के नागरिकों का स्टेटस फिर से तय करना होगा और एक बार समझौता होने और ब्रिटेन के आधिकारिक रूप से अलग हो जाने पर दशकों में यूरोपीय संघ में बने नियमों और कानूनों को ब्रिटेन के कानून के मुताबिक ढालना पड़ेगा।
यूरोपीय संघ क्या है, कैसे काम करता है, जानकारी दे रहे थे मोहनलाल शर्मा। और आइए दिल्ली से सीधे एक बार फिर चलते हैं बीबीसी के लंदन स्टूडियो, जहां बाथ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर इफ्तिखार मलिक हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर मलिक, मुझे मालूम है आपको जाना है, मैं चंद सवाल करना चाहता हूं आपसे। दुनिया भर से तमाम लोग नौकरी करने, पढ़ने, यानी कि राजनीतिक शरण, जिसको पोलिटिकल असाइलम कहते हैं, वो लेने के लिए ब्रिटेन आते हैं और सदियों से आते रहे हैं। कार्ल मार्क्स आए, लेनिन भी वहाँ पहुँचे, अब क्या क्या बदलेगा?
एक तो यह है कि इस डिबेट में जो रिफरेंडम के हवाले से हुआ है, इमिग्रेशन पे काफ़ी बात हुई। अगरचे ज़्यादातर जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं वो पोलाइट रहीं, लेकिन जो बाकी पार्टी हैं, यूकिप हैं और यूरोप के अंदर भी कई पार्टी हैं, तो उन्होंने नेशनलिज्म का बहुत उजाला किया, उनको बहुत उन्होंने उजागर किया। तो ये फिक्र है कि अल्ट्रा राइट जो फोर्सेस हैं, जो इनटॉलरेंट फोर्सेस हैं, जो बायस्ड हैं, जो नेशनलिस्टिक हैं, वो इससे स्ट्रांग हुई हैं और एक अपनी विक्ट्री उनकी है यूकिप की। और इसी तरीके से फ्रांस में आपने आज देखा है कि मैरीन ले पेन ने इससे बड़ी खुशी का इजहार किया है, और हॉलैंड में, नीदरलैंड में गियट वेल्डर्स ने ये कहा है कि अब नीदरलैंड को भी यूरोपियन यूनियन छोड़ने या रहने के लिए रेफरेंडम कराना चाहिए।
प्रोफेसर मलिक, मैं रोक रहा हूँ आपको, माफ़ कीजिएगा, ये इसी तरह की आवाज़ें अमेरिका में, चाहे डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन कैंपेन हो, वहाँ से भी आ रही हैं। हिंदुस्तान में भी राष्ट्रवाद की या नेशनलिज्म की आवाज़ें आती हैं, यूरोप से भी आ रही हैं। थोड़ा खुलासा करके यानी संक्षेप में बताइए कि ये कौन सा रवैया है, ये क्या हो रहा है दुनिया में और क्यों?
एक तो लोग कह रहे हैं कि ये जो ग्लोबलाइजेशन थी वो एक किस्म की सुपरफिशियल थी, और ये ग्लोबलाइजेशन का जो भी दौर था उसका एक इख्तिताम है, उसका एंड है। दूसरा ये है कि रीजनलाइजेशन थी, जिसकी यूरोपियन यूनियन सबसे एक कामयाब मिसाल थी, वो रीजनलाइजेशन वीक हो रही है, जो रीजनल ब्लॉक्स हैं वो वीक हो रहे हैं। और तीसरा ये है कि जो लिबरल पॉलिटिक्स थी या मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स थी, वो काफ़ी वीक हो गई है। और नतीजा ये है कि कुछ इकोनॉमिक इशूज़ की वजह से बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं वो इमिग्रेंट्स को अपना मानते हैं कि बना रहे हैं,
उनको लगता है कि उनके रोजगार पर असर पड़ेगा। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि 1973 से ब्रिटेन यूरोपीय संघ के साथ रहा है, तमाम मुहायदे हुए हैं ब्रिटेन और यूरोपीय ममालिक के बीच में, अब ये जब बदलाव होगा तो ये कैसे होगा? ये सब पूरी प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, जो साथ साथ जो चल रहे हैं, मुश्तरका जिसे कहते हैं उर्दू में, उनका क्या होगा?
पॉलिटिशियंस तो रीअश्योर करा रहे हैं या ब्रिटिश सोसाइटी को, लेकिन 80,000 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंडक्ट करते हैं, जो ऑपरेट करते हैं ब्रिटेन की यूरोपियन यूनियन के साथ रिलेशनशिप को। और यूरोपियन यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 50 के तहत एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स कोई मेजर चेंज नहीं आएगी, लेकिन ब्रिटेन को अपने यूरोपियन यूनियन से निकलने के लिए हर कंट्री के साथ, 28 कंट्री के साथ हर किस्म के नए एग्रीमेंट करने पड़ेंगे। तो ये काफ़ी गंभीर काम है, और इसके लिए बहुत सारे लोग पहले से कह रहे थे कि इसके इकोनॉमिक कॉस्ट भी है, पॉलिटिकल कॉस्ट भी है, और ब्रिटेन ज़्यादा आइसोलेटेड हो जाएगा।
प्रोफेसर इफ्तिखार मलिक, आपने कीमती वक्त निकाला स्टूडियो में आके हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको अभी दूसरे कार्यक्रम में जाना है तो आप जा सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया के तमाम इस खबर पर प्रतिक्रिया आई है, आइए सुनते हैं विश्व के नेताओं के क्या विचार हैं। लंदन से ही हमारी सहयोगी श्लीन कौर ने भेजी है ये रिपोर्ट।
ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के मुद्दे पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अमरीकी रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रितानी जनता की राय का स्वागत किया है और कहा है कि लोगों ने यूरोपीय यूनियन से अपनी आज़ादी के लिए वोट किया है। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ को छोड़ने के निर्णय से यूरोपीय संघ के कई सदस्यों ने निराशा जताई है। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा है कि ये एक बड़ा झटका है।
आने वाले कुछ हफ्तों, महीनों और वर्षों में यूरोपीय संघ के 27 और सदस्यों को ये तय करना होगा कि ब्रिटेन के बाहर निकलने के निर्णय पर वो कहीं जल्दबाजी में फैसला तो नहीं ले रहे, क्योंकि कोई भी गलत फैसला यूरोप के लिए और खतरा पैदा कर सकता है।
यूरोपीय संघ पर इस जनमत संग्रह का क्या असर पड़ेगा, इस पर चर्चा के लिए यूरोपीय संसद अगले हफ्ते बैठक कर सकती है। फ्रांस, नीदरलैंड्स और डेनमार्क की कुछ पार्टियां भी अब इसी तरह के जनमत संग्रह की मांग कर रहे हैं, और इससे कई और सदस्यों के बाहर निकलने का खतरा बढ़ रहा है। उधर नतीजा आने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने अपने कैबिनेट की एक आपात बैठक बुलाई है।
ब्रिटेन के निर्णय से हमें इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि यूरोपीय संघ में ऐसा क्या हो रहा है कि लोगों का भरोसा हम पर से उठ रहा है। चरमपंथियों और पॉपुलिस्ट आंदोलनों से वैसे ही बहुत खतरा है, विश्वास बनाने में ज्यादा समय लगता है लेकिन नष्ट होने में कम।
ब्रिटेन के फैसले ने विश्व भर में एक ब्लैक फ्राइडे का माहौल बना दिया है।
और विश्व भर में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में भी रुपया लुढ़का है, शेयर बाजार लुढ़के हैं। भारत के वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा है कि हमें अपने बाजार को संभालना होगा। सुनिए ये रिपोर्ट वैभव श्रीवास्तव से।
यूरोपीय संघ से अलग होने का फैसला चाहे यूनाइटेड किंगडम ने अकेले किया हो, पर इसका प्रभाव दुनिया की कई बड़ी और छोटी अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ झेलना होगा। आर्थिक बाजारों में पाउंड की कीमत में गिरावट तो हुई ही, पर साथ ही भारतीय मुद्रा और बाकी कई मुद्राओं में भी गिरावट देखी गई। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 67 रुपए प्रति डॉलर से नीचे गिरकर 68 पर पहुंचा। ब्रिटेन के लोगों के इस फैसले को द इकोनॉमिस्ट ने दुखद अलगाव बताया है। पत्रिका ने ब्रिटेन के लोगों के इस फैसले के बाद नुकसान को कम से कम करने की बात कही। अमरीकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के फैसले से ब्रितानी सरकार के गिरने का खतरा उत्पन्न हो गया है। वहीं चीन के सरकारी समाचार पत्र पीपल्स डेली के टैबलॉइड अखबार द ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि यूरोपीय संघ से अलग होने की सूरत में दुनिया भर में ब्रिटेन का दबदबा कम हो जाएगा। वहीं भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार जनमत संग्रह के निर्णय का आदर करती है और साथ ही वो आने वाले दिनों में और महीनों में पड़ने वाले प्रभाव से भी अवगत हैं। उधर आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि आरबीआई किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। गवर्नर रघुराम राजन ने यह भी कहा कि रुपए के मूल्य में अन्य मुद्राओं की तुलना में कम गिरावट आती है। भारतीय कारोबार जगत पर पड़े असर और बाजार में तेजी से गिरावट की बात पर बयान देते हुए भारत के वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि इस अनिश्चितता के माहौल में सरकार बाजारों को संभालने की ओर कदम उठा रही है।
देखना है कि जो कैपिटल मार्केट्स हैं, शेयर बाजार है, करेंसी मार्केट है, डेट मार्केट्स है, उसमें किस प्रकार का उथल पुथल हो सकता है, तो उसे हमें संभालना है, उस पर हमें ध्यान देना है।
उन्होंने ये भी कहा कि भारत की कई कंपनियां अब तक यूनाइटेड किंगडम के जरिए यूरोप के बाजार में प्रवेश करती थीं और अब तक आसानी से पूरे यूरोपीय संघ में कारोबार और निवेश कर सकती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। जनमत संग्रह के फैसले के बाद शेयर मार्केट में आने वाली अस्थिरता से जो नुकसान होगा वो तो होगा ही। भारत की कई बड़ी और छोटी कंपनियां ब्रिटेन में सक्रिय हैं और उन पर आर्थिक अस्थिरता का जो असर पड़ेगा वो भारत को भी प्रभावित करेगा। व्यापार पर पड़ने वाले असर के बारे में बताते हुए उद्योगपति आदि गोदरेज कहते हैं,
इट विल बी अ नेगेटिव डेवलपमेंट फॉर इंडियन कंपनीज ऑपरेटिंग इन द यूके।
यूके में काम कर रही कंपनियों के लिए ये एक खराब बात हुई है, बल्कि सभी कंपनियों के लिए जो यूके में काम कर रही हैं। विकास दर नीचे आएगा और व्यापारों को अब पहले की तरह आसानी नहीं होगी। ब्रितानी निर्यात पर भी असर पड़ेगा।
उद्योगपति आदि गोदरेज के शब्द। मार्टिन शल्ज जो यूरोपीय संसद के निदेशक हैं, उनका कहना है कि इस परिणाम का वो आदर करते हैं और साथ ही समय आ गया है कि यूरोपीय संघ संजीदगी और विश्वसनीयता के साथ काम करे। उनके अनुसार डेविड कैमरन के पास अब देश की बड़ी जिम्मेदारी है। इस जनमत संग्रह के फैसले के बाद यूरोपीय संघ में जुड़ने या अलग होने के समझौते यानी लिस्बन ट्रीटी के कानूनी असर देखने को मिलेंगे। ये भी देखना होगा कि यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ के नेता किस प्रकार आने वाले समय के लिए समझौतों पर अपनी मंजूरी देते हैं, जिसका असर बाजारों और रोजगार पर बड़े स्तर पर पड़ेगा।
वैभव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सोशल मीडिया, इन दिनों खबर छोटी हो या बड़ी, सोशल मीडिया पर लोग अपनी राय जरूर जाहिर करते हैं और यही बताने के लिए पंकज प्रियदर्शी हमारे साथ ही, जिनसे आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, सामने बैठे हुए। पंकज, बताइए संक्षेप में कि सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है, लोग क्या कह रहे हैं?
देखिए, कई लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया इस फैसले पर, कई लोगों ने खुशी भी जाहिर की है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान का आपने जिक्र किया होगा कार्यक्रम में। नताली बहमायर कहती हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसले का स्वागत कर आपके फैसले का स्वागत कर रहे हैं तो अवश्य ही कोई बड़ी गलती हुई होगी। जबकि जेफ गाविन ने लिखा है कि पिछले सप्ताह तक ट्रंप को ब्रेग्जिट के बारे में पता तक नहीं था, अब वे ब्रिटेन और ईयू के अलगाव का समर्थन कर रहे हैं।
ये डोनाल्ड ट्रंप पर ही ज्यादातर प्रतिक्रिया है।
केजरीवाल के बारे में भी है, जो उन्होंने टिप्पणी की,
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल।
तो एक व्यक्ति ने लिखा है कि सर आप यूके के ही पीएम क्यों नहीं बन जाते। जबकि एक पैरोडी अकाउंट से लिखा गया है, सर यूके को भूल जाइए, चलिए पहले अमेरिका को बचाते हैं, अगर कोई डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती दे सकता है तो आप हैं।
देखिए, सोशल मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं है, मुझे लग रहा है कि अब समय कम है, लेकिन एक आध दो ट्वीट्स और पढ़ सकते हैं आप।
एक ऋषि कपूर का मैं पढ़ देता हूं जो काफी चर्चित रहते हैं। उन्होंने लिखा है कि मैंने आज सुबह अपना वजन किया और पाया कि मैंने कई पाउंड यानी ब्रिटानिक करेंसी की बात कर रहे हैं गंवा दिए।
बहुत अच्छे ऋषि कपूर के ट्वीट्स भी बड़े प्रसिद्ध होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज प्रियदर्शी, आपने सोशल मीडिया का हमें काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। चलते चलते आइए श्रोताओं, सुनते हैं मुख्य समाचार सुशील झा से।
बीबीसी समाचार। एक जनमत संग्रह में ब्रिटेन के लगभग 52% लोगों ने यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने का समर्थन किया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने इस्तीफा देने का ऐलान किया। वो अगले 3 महीने में पद छोड़ देंगे। स्कॉटलैंड ने यूरोपीय संघ के साथ रहने का समर्थन किया, जिसके बाद स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन ने कहा है कि सरकार एक विधेयक तैयार कर रही है जिसके तहत ब्रिटेन से स्कॉटलैंड को अलग किए जाने पर दोबारा जनमत संग्रह हो। नॉर्दर्न आयरलैंड ने भी यूरोपीय संघ के साथ रहने का समर्थन किया है। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में शामिल होने की भारत की कोशिशों को चीन के विरोध के बाद बड़ा झटका लगा है और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सितंबर के महीने में मिनी आईपीएल आयोजित करने का विचार किया है। यह आयोजन विदेश में किया जाएगा।
तो दोस्तों, मुख्य समाचारों के साथ ही बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर में मैं राजेश जोशी आपसे अनुमति चाहता हूं। कार्यक्रम का संपादन किया सुशीला सिंह ने, तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे हेमंत कुशवाहा। अब से 1.5 घंटे बाद सुशीला सिंह ही लेकर आएंगी घटना चक्र। मेरी ओर से स्वीकार कीजिए, नमस्कार।